अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्मस्वरूप भक्तवृंद परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय परम पावन परमानंद के ये क्षण प्रातःकालीन अमृत बेला का शुभ्र शांत वातावरण श्री प्रेमपुरी आश्रम का ये सुंदर भवन महापुरुषों के पुरुषार्थ का कार्य रूप ऐसे सुंदर स्थान में महापुरुषों और भगवान के तेज से पूर्णतः सन्निहित ये सुंदर स्थान जो हमको आपको प्राप्त हुआ है इसके लिए महापुरुषों का और भगवान का बारंबार धन्यवाद। हमारी बुद्धि हमारा तन इसी प्रकार से इस ओर अग्रसर रहे, नित्य प्रति प्रातःकाल सुंदर भगवत चिंतन परमार्थ चिंतन का जो ये क्रम अनवरत इसी प्रकार चलता रहे, प्रभु से यही प्रार्थना। वर्तमान में हमारा जो चिंतन का विषय है श्रीमद् भगवद गीता भगवान के द्वारा निःसृत वाणी, किस प्रकार से भगवान अर्जुन को षोडश अध्याय सोलहवें अध्याय में ज्ञान दे रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से दैवी संपदा का, और हमारा जो दैवी संपदा के 26 गुणों में जो गुण हम लोगों ने कर लिया मार्दवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेश्वलो लुप्तम मार्दवम ह्रीह चापलम, कोमलता और सरलता दो दैवी संपदा के विशेष गुण हैं। जितना कोमल और सरल आपका जीवन होगा उतनी ही जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, न बुद्धि लगानी पड़ती है, न किसी प्रकार का तपस्या का जोर लगाना पड़ता है। जितनी सहज सरल स्थिति हम प्राप्त कर लेंगे उतनी ही जल्दी हमको रास्ता मिल जाएगा। और जल का उदाहरण हमने आपको कोमलता में भी और जो सरलता है दोनों में है ना, क्योंकि जितनी सरलता होगी, और पहले भी शायद ये उदाहरण हमने आपको दिया कि किस प्रकार से जीवन कोमल और सरल जब हो जाता है तो अद्भुत प्राप्ति होती है। और स्वयं आपके साधारण से अगर अपने रोज के जीवन में देखें तो आपके यहां बहुत सारे काम करने वाले जो है कर्मचारी आते हैं जिनको आप लोग नौकर बोलते हैं, तो आपको कौन सा नौकर पसंद है, जो गुस्से वाला या कोमल सरल वाला, क्यों जी क्या विचार आपका? जो परमानेंट नौकर बहुत से ऐसे होते हैं, हमने तो धीरू भाई के यहां सत्संग करते थे नेरुल में, वहां पर एक आती थी क्या नाम उसका, माता आती थी कार्य करने झाड़ू पोछा करने, तो सबसे पहले मुझे जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया धीरू भाई के यहां कि भाई इससे कुछ कहना मत, जो काम करे चली जाए, बोलना नहीं बिल्कुल। तो जैसे ही वो घुसती थी मैं बिल्कुल साइलेंट मोड में आ जाता था। उसकी विशेषता थी, बोले महाराज अगर आपने कुछ बोल दिया उसी समय वहीं की वहीं झाड़ू रख के चल देगी, है ना। तो एक रूप ये है, और दूसरा रूप ऐसा होता है सहज सरल स्वभाव। ऐसे नौकर को मेरे ख्याल से आप कभी भी छोड़ना, चाहे उसकी तनख्वाह बढ़ानी पड़े, सैलरी बढ़ानी पड़े, कैसे भी उसको मना के है ना आप रोकते हैं। तो जब जो चीज आपको पसंद है वही किसको पसंद है, परमात्मा को पसंद है ना। तो वही चीज है बिल्कुल शुद्ध रूप से, जितना आपका सरल जितना आपका कोमल स्वभाव होगा उतनी ही जल्दी। इसीलिए सबरी को भगवान ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, रावण की लंका में भगवान ने प्रवेश भी नहीं किया, हमारा ढूंढना तो बहुत दूर की बात है। सबरी की कुटिया को मारा जंगल में, कहां जंगल में वन में जाकर, किसके कारण, यही तो उसके पास था, यही तो उसके पास खजाना था महाराज, जो रोज प्रतिदिन उठ करके महाराज झाड़ू लेकर के सारे रास्ते को साफ, कोमलता और सरलता। यदि ये चीज हमारे अंदर, बड़ा कठिन गुण है मनुष्य के जीवन में, बहुत कठिन गुण है, बहुत कम मिलता है महाराज। तो जिस समय हमारे अंदर, क्योंकि भगवान ने तो शुद्ध भाषा में ही शुरू के अध्यायों में ही ये चीज समझा दी है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्त्वता। ये जो कश्चिन् माम वेति तत्त्वता, यानी करोड़ों में कोई एक कोमलता और सरलता के स्वभाव को पाप आता है, अन्यथा ये कोमलता सरलता का स्वभाव इतनी आसानी से आता नहीं है। ये दैवी संपदा के कोई भी गुण इतने आसान नहीं है जितनी आसानी से आप इनको श्रवण कर रहे हैं। जिस दिन एक भी गुण को आप अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करेंगे, उसी दिन आपको जो है समझ में आएगा कि वास्तविकता में इन एक एक गुणों में कितनी गहराई है। एक भी गुण, जितने भी 26 के 26 गुण हैं, सब असाधारण हैं, बिल्कुल असाधारण है, एक भी साधारण नहीं है। उसके बाद भगवान ने मार्दवम कोमलता के बाद कोशिश करें कच्छप की तरह, हाँ दोनों गुण हमारे अंदर विद्यमान भगवान की तरह होने चाहिए, जैसे कठोरता और कोमलता। अपने प्रति हमेशा कठोर बने रहो, संसार को स्वीकारने में अपने हृदय को पत्थर बना लो। जब आप यदि अध्यात्म में कुछ पाना चाहते हैं तो अपने हृदय को आपको अपने लिए कठोर बनो और दूसरे के लिए कोमल बनो। और हम संसार में क्या करते हैं, उल्टा करते हैं कि नहीं करते हैं? संसार में हम दूसरे के लिए कठोर बन जाते हैं और अपने लिए कोमल बन जाते हैं। क्यों भाई? अगर चार फल आपको कोई दे दे, पंडित आपको चार फल दे दे और उसमें से तीन खराब हो एक अच्छा हो, और वो बोले कि सबको एक एक प्रसाद में बांट देना, तो अपने लिए कौन सा निकालोगे? क्यों भाई? अपने लिए क्या होना चाहिए? कोमल होना चाहिए और दूसरे के लिए कठोर होना चाहिए, तो कौन मिल जाएगा? ब्रह्म ज्ञान और परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे काम नहीं चलेगा महाराज। नचिकेता का उदाहरण यही तो दिया है, हैं? अपने पिता को समझा रहे हैं महाराज, ये बूढ़ी गाय देकर आपको क्या मिलेगा नरक के अलावा, हैं? देखो ये है कोमल स्वभाव, है ना। दूसरे को जो देना है वो क्या, अपने लिए क्या, अपने लिए उस कछुए की तरह कठोर हो जाओ और दूसरे के लिए क्या हो जाओ, इतने कोमल हो जाओ महाराज, है ना, कि दूसरे को ये भी अनुभव ना हो। हमारे यहाँ के एक मंत्री महाराज हॉलैंड गए विदेशी दौरे पर, और हमारे यहाँ तो बीआईपी कल्चर है। बीआईपी का मतलब ही होता कठोर, है ना। बीआईपी जब हम बन जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, है ना, सब चीजें हमको बीआईपी चाहिए। अब वहां हॉलैंड में गए महाराज, तो कोई भारतीय उनका जो है बैग उठाने वाला, यहां तो महाराज कुली है, वहां तो कोई व्यवस्था है नहीं, सब अपने आप करो। तो अब उनकी तो आदत पड़ी हुई कि 10 आदमी आके मेरा क्या उठाएं, बैग उठाएं महाराज। और वहां पर कोई मिल नहीं रहा, तो एक रिसीव करने के लिए आया था बेचारा उनको, तो उन्होंने कहा लाइए लाइए बैग मुझे दीजिए। तो उन्होंने जब चलने लगे तो बोले आप कौन है, बोले मैं यहां का राजकुमार हूं। हाँ? तो जरा विचार कीजिए, ये जो हमारे अंदर गुण होना चाहिए वो कहां चला गया, विदेशों में चला गया। राजकुमार अटैची लेके चल रहा, और चार कौड़ी का एमएलए बेचारा हाथ जोड़ के वोट मांग के जो यहां एमएलए बनता है, दुनिया भर की गंदगी करके जो एमएलए बनता है, उसके लिए क्या चाहिए, अटैची चाहिए, मारे उठाने वाला एक चाहिए। तो कोमलता जो दूसरों के अंदर चला गया, जो हम लोगों के शास्त्रों में लिखे हुए गुण है महाराज, है ना, ये थोड़े दिन के बाद हमको आपको गीता पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा महाराज। हाँ, क्योंकि जब गुण उनके पास होंगे तो कहां जाओगे, हमने तो हम तो सब क्या बन गए, बीआईपी बन गए महाराज। तो बीआईपी बनने से काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा, इसीलिए हमारे यहां गुरुकुल होते थे, और गुरुकुल में महाराज भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने से पहले गुरुकुल गए थे कि बाद में गए थे, हैं? कंस को मारने के पश्चात भगवान गए गुरुकुल में, और कंस उस समय का सबसे बड़ा आततायी था। जरा सोचो, अगर साधारण व्यक्ति मारता तो उसका अहंकार कहां पहुंच जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के बाद गुरुकुल में जाकर जंगल में सुदामा के संग क्या करने जाते थे, लकड़ी बीनने जाते थे महाराज। जरा विचार करके देखो थोड़ी देर के लिए, हैं? क्या हमारे अंदर इस कोमलता सरलता का कोई कण भी दिखाई देता है, एक रत्ती भी तो हो कहीं से कहीं तक कि एक कहीं हमारे अंदर रत्ती भी आ जाए उस कोमलता सरलता की। भगवान श्री कृष्ण महाराज चने खा करके लकड़ी बीन रहे हैं जंगल में, आंधी तूफान में जो है गांवों को लेकर गुरुकुल की घूम रहे हैं, चरा रहे हैं, और उसके बाद शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। राजा के पुत्र हैं, और इतने बड़े जो है दैत्य का उन्होंने क्या किया, संहार किया, लेश मात्र अहंकार नहीं महाराज। तो इसलिए मार्दवम कोमलता सरलता, कठोर बनना है अपने लिए बनो, जो ये हमारी वासनाएं दिन प्रतिदिन संसार को खा लेना चाहती हैं, है ना, ये बंदर का जीवन कहलाता है। आप कुछ जानते हैं चिड़िया और बंदर के जीवन में क्या अंतर है? चिड़िया 5 किलोमीटर से दाना निकाल के लाती है महाराज। कितनी रेंज है उसकी? वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया, एक चिड़िया अपने बच्चे के लिए कितनी दूर से दाना लाती है? 5 किलोमीटर की रेंज है महाराज उसकी। खुद नहीं खाएगी, बच्चे के लिए लाएगी, फिर उसको छीलेगी, फिर उसका सबसे जो है जो गूदे वाला भाग होता है उसको बिल्कुल शुरू शुरू में बिल्कुल नन्ना सा जब बच्चा होता है तो वो दाना नहीं खाता, उसमें से एक बूंद दूध उसके मुख में टपकाती रस। किसने, किसी माता ने अपने बच्चे को ऐसे पाला है क्यों भाई? जरा विचार करके देखो, वो चिड़िया जो है एक बूंद टपका के फिर चली जाती, फिर दूसरा दाना लेने, क्योंकि भगवान ने उसको 2-4 दाने इकट्ठे लाने का व्यवस्था नहीं दी है, सुविधा नहीं दी है। और आपके यहां तो महाराज 1 महीने का पाउडर दूध का ले आते हो बच्चे के लिए, विचार करके देखो जरा है। और वो चिड़िया जिस दिन बच्चा जो है घोंसले से निकल जाता है, दाना खाना बंद कर देता, उसी दिन वो भूल जाती। ये चिड़िया का जीवन है। और दूसरी तरफ बंदर का जीवन है हमारा। बंदर कभी भी, आपको मालूम हो या ना मालूम हो लेकिन जान लीजिए, बंदर कभी भी अपने बच्चे को खाने को नहीं देगा, अपने बच्चे से भी छीन लेता। ये बंदर का क्या है? स्वभाव है। और मर जाता है तो उसको लेके घूमता है अपनी पीठ पे, आखिरी हड्डी तक छोड़ता नहीं है। और अगर जमीन जल रही हो गर्मी में तो अपने बच्चे को नीचे रख के उसके ऊपर बैठ जाता है। ये बंदर का क्या है? जीवन जीने का तरीका है हमारा, जो अपने प्रति सरल है और दूसरे के प्रति कठोर है। और चिड़िया अपने प्रति कठोर है और दूसरे के प्रति सरल है महाराज। एक क्षण भी नहीं लगाती। हम लोग तो जंगल में रह गए, यही सब आनंद लेते हैं महाराज, है ना। ये प्रैक्टिकल जो भगवान ने जो दैवी संपदा के गुण गिनाए ना, ये इन जानवरों के अंदर, पक्षियों के अंदर साक्षात देखने को मिलते हैं महाराज, है ना, कि किस प्रकार से इतना परिश्रम करने के बाद भी ज्यों ही बच्चा अपने पर्रों से उड़ने लगा, उसी दिन चिड़िया उसको क्या कर देती है? भुला देती है महाराज, फिर उसको याद भी नहीं करती। और हम लोग जो है बंदर की तरह अपना ममत्व तो लेकर क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं आर्जव और मार्दवम, दोनों गुणों को सनय सनय कोशिश करो कि हमारे अंदर ये आ जाएं। इतनी जल्दी आएंगे नहीं, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? करोड़ों बार जब हम कोशिश करेंगे तब जाकर आपके अंदर कोमलता सरलता आएगी, यानी आप VIP से क्या हो जाएंगे? अरे ब्रह्म के संग एक बड़ा सुंदर शब्द लगाया जाता है, निर्विशेष ब्रह्म। क्या है? निर्विशेष ब्रह्म है। सांसारिक लोगों के आगे विशेषण लगते हैं, लेकिन ब्रह्म के आगे कोई विशेषण, क्योंकि ब्रह्म के समान दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए वो निर्विशेष है। तो जब ब्रह्म निर्विशेष है तो तुम भी क्या हो जाओ? निर्विशेष हो जाओ। अगर ब्रह्म को पाना चाहते हो तो, परमेश्वर को पाना चाहते हो तो निर्विशेष हो जाओ। भगवान धनुष बाण लेके नंगे पैर जंगल में घूम रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हांक रहे हैं, राजा सत्यव्रत को मछली बनकर भगवान समुद्र में, राजा सत्यव्रत को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हुए खुद नाव जो है खींच रहे हैं। क्यों भाई? श्रीमद भागवत में सुना कि नहीं सुना आपने? राजा सत्यव्रत की कथा, मत्सा अवतार भगवान का है, खुद नाव भी खींच रहे हैं और सत्यव्रत को ब्रह्म का क्या कर रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। और हम ब्रह्म के भी, भगवान के भी बाप हैं। देखो गद्दी पे बैठ के आपको क्या सुना रहे हैं? एक हमारे प्रभु हैं सहज सरल, शंकराचार्य जी महाराज पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, उसके नीचे चारों शिष्य बैठ जाते थे और ब्रह्म ज्ञान का क्या होता था? चिंतन होता था महाराज। इतने सहज सरल, और हमको क्या चाहिए? गद्दियां चाहिए, दुनिया भर का नाटक चाहिए, तब हम आपको किसका उपदेश करेंगे? तो महाराज फिर क्या गति होगी तो आप खुद समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है सहजता और सरलता। परमेश्वर बहुत सहज सरल है, और इतना सरल है कि आपका अपना ही रूप कर बैठा है, और हम इतने कठोर हो चुके हैं कि उसको देख भी कहते नहीं, आंखें पत्थर आ गई। क्या हो गया? आंखें हमारी इतनी पत्थर आ गई हैं कि हम अपने सबसे नजदीक की वस्तु को भी देखने में सक्षम नहीं है, ये केवल हमारे अंदर की आर्जवम और मार्दवम जो दो गुण हैं दैवी संपदा के, इनकी समाप्ति का परिणाम है। उसके उपरांत भगवान ने एक बहुत सुंदर शब्द ह्री, ह्री शब्द जो है लज्जा सूचक शब्द है, लज्जा के लिए प्रयोग किया था। वैदिक जो है हमारी श्रुतियों में भी जो है शिक्षावल्ली में आपको बताया ना, आचार्य देवो भव, पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, इसी में ही जो है ह्रिया देयम, श्रिया देयम, श्रद्धया देयम, है ना, जो तरीका बताया गया है ह्री लज्जा से दान कैसा करना चाहिए, वो लज्जा युक्त होकर करना चाहिए। क्योंकि देने वाला वो है। रहीम दास को ये बात समझ में आ गई, लेकिन हमारे आपके नहीं समझ में आई महाराज, है ना। हिया देयम, श्रिया देयम, श्रद्धया देयम, है संविदा देयम, बहुत सारी चीजें हैं शिक्षावल्ली में, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में श्रद्धा युक्त होकर देना चाहिए, है लज्जा से युक्त होकर, भिया देयम भय से युक्त होकर देना चाहिए। तो ये सारी शिक्षावल्ली की चीजें हैं जो दैवी संपदा है, ये बिल्कुल एबीसीडी है हमारा अध्यात्म की। तो जिस प्रकार से तैतरी श्रुति जो है बताती है कि लज्जा युक्त जो अध्यात्म का पथिक है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, हाँ, कोई भी ऐसा कर्म करते समय जिसमें शास्त्र जिसका आदेश ना देता हो या समाज जिसका आदेश ना देता हो, उसमें लज्जा का क्या करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, है ना। जैसे भगवान बड़े संकोची स्वभाव के थे, भगवान कैसे थे, परम संकोची स्वभाव के होने के कारण स्वयं भगवान ने जिस समय रुक्मिणी जी के हरण की कथा आप लोग भागवत में सुनते हैं, है ना, तो रुक्मिणी जी ने भगवान को एक चिट्ठी भेजी, हालांकि कारण पूर्णतया राजनीतिक था, लेकिन भगवान ने जो है उस राजनीतिक कारण को भी अपने लिए मान लिया। रुक्मिणी जी, भगवान ने चिट्ठी नहीं भेजी, हम लोग कहते हैं रुक्मिणी हरण, भगवान ने रुक्मिणी का हरण, तो ये होता है कि आदमी दूसरे की मर्जी के बगैर, जैसे माता भगवती सीता की मर्जी नहीं थी लेकिन रावण उठा ले गया लज्जाहीन होकर, है कि नहीं। लेकिन दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण ने चिट्ठी नहीं भेजी, चिट्ठी किसने भेजी, रुक्मिणी जी ने भेजी, और महाराज उसमें स्पष्ट लिखा यदि आप मेरी व्यवस्था नहीं करेंगे तो मेरे पास एक ही चारा है, उसका नाम है आत्महत्या, और आत्महत्या हमारे यहां सबसे बड़ा पाप माना गया है ना, जघन्य अपराध माना गया है, तो ऐसे आत्महत्या के अधिकारी दोष जो है आपके ऊपर ही लगने वाला है, क्योंकि लोग यही कहेंगे कि कृष्ण के अंदर हिम्मत नहीं थी इसलिए रुक्मिणी को ब्याह नहीं पाए, फिर तो आपकी ही बेइज्जती अपमान होना है। जब ऐसा महाराज पत्र आया तो फिर भगवान कहां ठहरने वाले, क्योंकि आए इसी कार्य के लिए, हैं क्या नाम उसका, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चा दुष्कृताम, दुष्कृतियों के विनाश के लिए आए। और हम लोग कहते हैं हरण, बड़ा विचित्र शब्द जोड़ दिया, रुक्मिणी हरण, जरा सोचो, भगवान ने रुक्मिणी जी को बुलाया, लेकिन जाने से पहले जो यहां पर ह्री शब्द भगवान ने दैवी संपदा में स्वयं पालन किया है वो क्या है कि भगवान ने इस कार्य के जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने धर्म पत्नी होना स्वीकार किया था, इसलिए अपनी पत्नी को लेने जब जा रहे हैं तो महाराज बलदेव को भी भगवान ने नहीं बताया कि मैं जा रहा हूं, ये लज्जा का रूप दर्शाया गया है ना, नहीं तो भगवान सारी फौज इकट्ठा करते कि मुझे जो है कन्या को उठा के लाना, नहीं, जो कार्य मेरे लिए है वो मैं ही करूंगा, चाहे उसमें मैं जीवित बचूं अथवा ना बचूं। तो इतना संकोच, इतनी लज्जा उस समय भगवान ने अनुभव की और स्वयं अकेले ही चल पड़े, बलदाऊ जी को तो बाद में पता चला है ना। तो जिस समय भगवान ने रुक्मिणी जी को शंखनाद करके जो है वहां से लाए, भगवान छिपा के नहीं लाए, भगवान ने जब रुक्मिणी जी रथ में बैठ गई तो क्या बजाया, पांच जन्य शंख बजाया महाराज, और सारे जो है राज्य में चारों तरफ वो गूंज जब हुई तो सब जानते थे किसी और का नहीं, कृष्ण का ही शंख है महाराज, और सब अपने अपने रथ तैयार करके युद्ध के लिए दौड़ पड़े। और इधर बलदाऊ को बाद में पता चला कि भगवान इस कार्य के लिए गए हैं, तब वो अपनी सेना लेकर आए, भगवान रुक्मिणी जी को लेकर चले, इधर बलदाऊ ने युद्ध किया, लेकिन भगवान ने एक बार भी बलदाऊ से ये नहीं कहा कि तुमको मेरे लिए युद्ध करना, ये लज्जा का स्वरूप है। दैवी संपदा में किसी भी ऐसे कार्य को जिसमें शास्त्र जिसका आदेश न देता हो या जिसमें जो है समाज आदेश न देता हो या समाज के सामने करने वाला वो कार्य न हो, ऐसे कार्य में पूर्णतया लज्जा और संकोच का आपको अनुभव होना चाहिए। उसमें जो है इसीलिए हमारे यहां दान के लिए शब्द रहा हिरिया देहम, दान देने में अपने आप को सावास अनुभव नहीं करना चाहिए बल्कि क्या अनुभव करना चाहिए। यदि आप देखो दो चीजें हैं, दान देकर अगर आप संसार प्राप्त करना चाहते हैं तो अकड़ के दो, जो सारी दुनिया का नियम है हमारा, और अगर दान देकर आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर जो है रहीम दास जी का फार्मूला वहां लगता है ना, देन हार कोई और है जो भेजत दिन रैन, जो रात दिन आपके पास भेज रहा वो देने वाला कोई और है, रोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन रिया देयम। देखो वेद की श्रुति का पालन कौन कर रहे हैं, रहीमदास जी, एक जिसको कहना चाहिए जो हमारे सनातन धर्म से जिसका कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, उसने प्रेमपुरी में बैठ के स्वाध्याय नहीं किया तैतरी श्रुति का है, हमको आपको मंत्र याद है लेकिन वो महाराज प्रैक्टिकल कर रहा है, नीचे जो है सोने की असरफियां देते हुए भी उसके नयन कहां हैं, नीचे हैं, लोग भरम हम पे करें। तब उन्होंने रहीमदास जी ने क्या कहा, उन्होंने महाराज स्पष्ट शब्दों में कहा, रहीमन बात अगम्य की कहन सुनन की नाही। और जब अगम्य है जहां पर मन वाणी बुद्धि का प्रवेश नहीं, जे जानत ते कहत नहीं और कहत ते जानत नहीं, जो जानते हैं वो बोल नहीं सकते और जो बोलते हैं वो जानते नहीं, ये महाराज संसार का नियम है ना, भगवान की व्याख्या करना ब्रह्म की व्याख्या करना बड़ा आसान है, शास्त्र पढ़ लो पढ़ा लो, लेकिन महाराज जब अनुभूति की बात आती है, जब यमराज सामने खड़ा होता है, है? क्यों भाई, लाल लाल आंखों वाला भैंसा लेके यमराज तुम्हारे सामने रात में आ जाए, स्वप्न में ही आ जाए मान लो, तो तुम्हारा मन अगले दिन सत्संग में लगेगा है? क्यों जी, कौन दिखाई देगा है? भैंसा ही दिखाई देगा, हमारा भैंसे भी बैठ के आया लेने के लिए, जरा सोचो। तो इसलिए ये जो ह्री शब्द लगाया गया और क्रिया देयम श्रिया देयम श्रेयस्कर है ना, जैसे रहीमदास जी सोने की असरफी देने में भी संकोच का अनुभव, जो बिल्कुल भी संभव नहीं है महाराज कि सोना दान करे आदमी और वो भी, और अपने पास शाम को उनके पास कुछ भी नहीं होता था महाराज, अपने लिए रोटी खाने के लिए नहीं होता है ना, हाँ जब निकाल दिया, जब राजा को पता चला ना, उसने रहीमदास जी को निकाल दिया, जाओ भाग जाओ हमारे यहां से, हमें सोने की सरफियां चांदी के सिक्के देता हूं और तुम जो है चोर डाकू जो भी आ जाए उसको बांट देते हो, बोले निकल जाओ हमारे राज्य, निकल गए। एक बार भी उनसे क्षमा याचना नहीं कि प्रभु मुझे माफ करो, मैं जो है आपकी जो है बंदगी करूंगा फलाना, तुरंत का तुरंत छोड़ दिया, लोग पीछे पीछे भागे, रहीमदास जी फिर से सोने की सरफियां देंगे, बोले बेटा मेरे पास कुछ भी क्योंकि मैं खुद भूखा हूं, यारों यारी छाण दो बेरहीम अब नाही। रहीमदास जी ने कहा कि अब वो रहीम नहीं है, यारों यारी छाण दो, यहां सोने की सरफियां और चांदी के सिक्के अब नहीं मिलने वाले हैं, बेरहीम अब नाही, दर दर वे फिर भटकत फिरे मांग मधुकरी खाएं, मैं तो खुद अब बिच्छा का अन्न खा रहा हूं, रोटी मिल जाए तो खा लेता हूं और नहीं मिल जाए तो भूखा सो जाता हूं, ऐसा महाराज ये ब्रह्म ज्ञान है, जहां पर कोई किसी प्रकार का डर भय नहीं है, है ना, अभयम, कैसे अभय है महाराज, कल क्या होगा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है महाराज, और जनता उनके पीछे घूम रही कि रहीमदास जी तो महाराज वो रहीमदास जी हैं जो सोने की ये सरफियां बांटा, ऐसा लोगों के मन में बसा हुआ, हमारे गांव में आ गया हमारा गांव जो है सोने चांदी का भंडार बन जाएगा, लेकिन बेचारे ये नहीं जानते कि अब तो इनके पास कौड़ी भी नहीं है, लेकिन ऐसी अवस्था में भी नरसिंह मेहता की तरह रहीमदास जी निर्द्वंद हैं, कल्पना कर सकते हो आप ऐसे जीवन की, सोचने में भी महाराज चक्कर आ जाएगा, क्यों जी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जरा सोचो, जहां पर आपको अमीर घोषित कर दिया गया हो और वहां जाकर आप बताओ अब तो मैं फूटी कौड़ी का भी मालिक, अगर तुम रोटी खिला दोगे तो पेट भर जाएगा, नहीं खिलाओगे तो मैं भूखा सो जाऊंगा, ऐसा वर्णन आप कर सकते हो महाराज? लोग तो अपनी इज्जत बचाने के लिए ना जाने कितना कर्जा चढ़ा लेते हैं। हैं? क्या चढ़ा लेते हैं? कर्जा किसके लिए? कहीं हमारी इज्जत ना चले जाए। लेकिन यही तो अध्यात्म सिखाता है, जाहि विधि राखे राम, जैसे वो रखे वैसे रहने में आनंद का क्या करो, उस परमात्मा को मत छोड़ो, बस बाकी सब जो हो रहा है उसको यथा योग्य होने दो, कोई लज्जा संकोच करने की जरूरत। लेकिन जहां लज्जा संकोच करनी है वहां पर परमात्मा को आगे कर दो महाराज। हैं हिरिया देयम, श्रिया देयम, संविदा देयम, हैं तरह तरह से भगवान श्रुतिकार ने समझाया तैत्री श्रुति में। तो वही शब्द यहां भगवान ने जो है दैवी संपदा के रूप में हमको आपको दिया है। लोक में शास्त्र के विरुद्ध जो भी हम आचरण करते हैं, क्योंकि अब तो स्वतंत्रता वाला समाज है महाराज, कोई लाज संकोच नहीं किसी से बोलने में, किसी से, किसी के सामने। हमारे यहां तो ये सब पहले बहुत बेसिक नॉलेज जिसको कहते हैं, साधारण सा प्राइमरी क्लास था, बड़ों से कैसे बात करनी, बड़ों के सामने क्या नहीं करना। लेकिन अब तो सारी लज्जा संकोच सब क्या हो चुका है, सब समाप्त हो चुका है महाराज। कोई भी किसी के सामने कैसी भी स्थिति में रहने को अपनी प्रसन्नता मानता है। तो ह्री शब्द का उपयोग यहां पर लज्जा से के लिए किया गया कि वास्तविकता में दैवी संपदा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर अत्यधिक लज्जा का होना आवश्यक है। उसके बाद जो अंतिम इस श्लोक का गुण है दैवी संपदा का, उसका नाम है अचापलम, चपलता का अभाव। चपलता का मतलब है चंचलता। हमारे अंदर बहुत सारी मन की जो चंचलताएं हैं उनके अनुरूप जब हम कर्म करने लगते हैं, अगर आप अपने कर्मों का विवेचन करके देखेंगे तो उसमें से आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर बहुत से ऐसे कर्म हैं जिनका वास्तविकता में हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो अपने लक्ष्य का निर्धारण कीजिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, परमात्मा है या संसार है। पहले तो ये निर्णय करो, अगर परमात्मा है तो फिर धीरे धीरे व्यर्थ के चेष्टाओं को क्या करते जाओ, त्यागते जाओ, क्योंकि व्यर्थ की चेष्टाओं से संसार में ही आपको कुछ मिलेगा, परमार्थ में कुछ मिलने वाला, क्योंकि भगवान को आपके विशिष्ट कर्मों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान जो है कितना एक दाना महाराज खा के तृप्त होने वाले परमेश्वर, उनको हम क्या दे सकते हैं, क्यों भाई? अरे जो एक दाना खा के महाराज 60,000 ऋषियों को तृप्त कर सकता है, हम उनको दे ही क्या सकते हैं महाराज। इसलिए आपके विशिष्ट कर्मों को अगर आप सोचें, है ना, जैसे जो है बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा, क्या नाम उसका, अमीर खुसरो ने आज से 750-800 साल पहले जिस समय हजरत निजामुद्दीन से मिलने के लिए गए, तो बहुत बड़े महाराज कवि थे, राज दरबार के कवि थे अमीर खुसरो। तो उन्होंने सोचा कि जा करके मैं अपने गुरु जो है हजरत निजामुद्दीन ये कविता सुनाऊंगा, वो कविता सुनाऊंगा। लेकिन महाराज वो तो परम सिद्ध संत थे, सूफी संत हैं, उनके सामने पहुंचते ही साहब भूल गए महाराज, हैं साहब भूल के केवल उन्हीं को एकटक देखते रह गए। तब उन्होंने वापस आके महाराज एक पद लिखा, छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलाएगी। हाँ, देखते ही जो हाल गोपिकाओं का भगवान श्री कृष्ण को देखते हो जाता था, शुद्ध बुद्ध खो गए, अपनी याद ही नहीं रही कि मैं कौन हूं, कवि हूं कि क्या हूं। तो ऐसा प्रभाव होता है किसका, भगवान वास्तविकता में हम भगवान को कुछ भी दे नहीं सकते हैं, तो भगवान के लिए हमको किसी बड़े बड़े आडंबर की आवश्यकता नहीं है। आप जितने जो है सरल होंगे उतनी ही आपके अंदर मन की चंचलताएं कम होंगी और व्यर्थ के कर्मों से आप क्या कर सकेंगे, बच सकेंगे। क्योंकि भगवान तो स्वयं ही इतने श्रेष्ठ हैं कि जिस समय ध्रुव ने भगवान को प्रकट किया, भगवान प्रकट हुए और उसके बाद उसने, इस छोटे से बालक ने सोचा मैं कुछ आता ही नहीं, अब स्तुति कैसे करूं। तो ऐसा वो सामर्थ्यवान ईश्वर है महाराज, ऐसा उसका ऐश्वर्य है कि शंख छुआते ही गाल में ध्रुव ने वेदों के माध्यम से स्तुति भगवान की प्रारंभ कर दी। तो जो ऐसा सामर्थ्यवान है जिसके स्पर्श मात्र से वेद का ज्ञान हो जाता है, हम उसको कर्मों के माध्यम से क्या दे सकते हैं। इसलिए शनय शनय चेष्टा करनी चाहिए कि व्यर्थ के कर्मों से अपने मन को, जिनका हमारे आध्यात्मिक पथ में, संसार में तो महाराज आप मरते दम तक कर्म करते रहो, संसार वाले कहेंगे अगर कोई किसी को भोजन बना के खिलाता है तो संसार वाले कहेंगे मरना बाद में पहले हमारे लिए क्या बना दो। संसार का यही नियम है कि नहीं है? संसार वाले तो कभी आपसे नहीं कहेंगे जो कमा के खिलाता हो परिवार को, परिवार कहेगा पहले कमा के दे जाओ उसके बाद मरना जाके। ये संसार का क्या है नियम है महाराज, ये कर्मों से आपको कभी भी छोड़ेगा, मरते दम तक छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन भगवान को आपके व्यर्थ के कर्मों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ही तो सब कुछ देने वाले हैं, है ना। तीन लेयर हैं देखो, सबसे पहली लेयर है शरीर, है इस शरीर के माध्यम से अंदर बैठा हुआ जो जीव है वो अपने आप को कर्ता भोक्ता मानकर इन इंद्रियों के माध्यम से इन भोगों को भोगता है और ये सोचता है कि मैं भोग रहा हूं। खाने वाला मुख है या जीव है? जीव कुछ खा ही नहीं सकता महाराज, है जीव चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, शरीर चलता फिरता है। तो भोगने वाला वास्तविकता में शरीर है, लेकिन मानता कौन है? जो कुछ कर नहीं पा रहा है। और उससे भी बड़ा मजा ये है कि उस जीव को भी जो प्रकाशित करने वाला है वो कोई और है महाराज, है ना। तीन लेयर है ना। तीसरी जो सत्ता है जिसके द्वारा ये शरीर क्रियान्वित है, और उसके बाद ये जीव अपने आप को कर्ता भोक्ता मान रहा है। इसीलिए तो आप पढ़ पढ़ के अपने आप को क्या सोचते हैं, क्या बन गया मैं? ज्ञानी बन गया। भाई मानते हो कि नहीं मानते हो? तो जरा एक बार बताओ, कौन ज्ञानी बन गया? शरीर बना या तुम बने? हैं? ज्ञानी कौन बना? इतने सारे शास्त्र पढ़ के या कर्म करके या जो भी हम करते हैं, ज्ञानी कौन बनता है? समस्या तो ये है। तो जब हमारे ऋषियों ने देखा तो वास्तविकता में ये सब हमारा क्या है? भ्रम मात्र है। और इस भ्रम को दूर करने के लिए ही तो हम शास्त्रों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। शास्त्रों का अध्ययन पंडित बनने के लिए नहीं किया जाता महाराज, उसके लिए तो संसार वाले तुमको डिग्री देंगे, बड़े विद्वान बड़े विद्वान, लेकिन बड़े विद्वान होने से तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तुमको तो तब मिलेगा जिस दिन तुम इन शास्त्रों के माध्यम से अपने भ्रम के पर्दे को हमेशा के लिए क्या कर दोगे। कबीरदास जी कहते नहीं है, क्या नाम उसका, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवय पणंत। दीपक जल रहा है और उसके तरफ बहुत सारे पतंगे नष्ट हो होकर मर रहे हैं, दूसरा देख रहा है लेकिन फिर भी जाकर उसी में जलकर मर जाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आद उबरन। किसी एक को ये बात समझ में आती है और वो अपने भ्रम की निवृत्ति कर लेता है कि मुझे इस आग में जलकर मरना नहीं है। कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि ये शास्त्र अचापलम, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, जिनका हमारे पास कोई जीवन में अस्तित्व या काम नहीं है, उन सारी चेष्टाओं को अलग रखते जाओ, इसका परिणाम ये होगा कि बहुत साधारण सी चेष्टाएं तुम्हारे जीवन में रह जाएंगी और इस प्रकार तुम्हारा मन तुम्हारा शरीर स्थिर हो जाएगा और ये मन बुद्धि चित्त संसार की ओर भागने की बजाय किधर की ओर भागने लगेगा, परमेश्वर की ओर भागने लगेगा। इतना ही तो काम करना है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध, सीधा सा ब्रह्म ज्ञान है महाराज। संसार की ओर मुड़े तो बंधन और परमात्मा की ओर मुड़े तो मुक्ति महाराज। तो इस परमात्मा की ओर भगाने के लिए अचापलम, व्यर्थ की जो चेष्टाएं हैं जिनका हमारे जीवन में कोई काम नहीं या हमारे आध्यात्मिक रास्ते से उसका कोई लेना देना नहीं है, उस चीज को दूर से ही क्या कर दो। क्योंकि आपसे ना तो कुछ परमात्मा पूछने वाला है और ना ही आपको परमात्मा को किसी प्रकार का कोई जवाब देना है। भगवान तो तुमसे केवल इतना ही पूछना चाहते हैं कि तुम्हारा अंतःकरण कैसा है। सीधी सी बात यह है, अगर तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है तो वो महाराज परमेश्वर झलकने लगेगा, और अगर अंतःकरण अशुद्ध है तो चाहे जितने शास्त्र रट डालो, सुन डालो, सुना डालो, है ना। इसीलिए तो श्रुतियों ने स्वयं कह दिया, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्योना मे ध्याना बहुना श्रुतेन। क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि शास्त्र के माध्यम से चाहे सुनो या सुनाओ, तुम्हारा लक्ष्य ये होना चाहिए, लक्ष्य निर्धारण हो, हमारा लक्ष्य संसार है या परमात्मा। अगर संसार लक्ष्य है तो महाराज खूब आनंद लो इसका, लेकिन इससे परमार्थ तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इससे संसार में आपको मान सम्मान दुनिया भर का बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन परमार्थ नहीं मिलेगा। जो परमात्मा रूपी परम सत्य है उसके दर्शन नहीं होंगे, और अगर उसके दर्शन करना चाहते हो तो महाराज फिर इन शास्त्रों के माध्यम से अपने आप को पढ़ना सीख लो, और उसका परिणाम ये होगा अचापलम, धीरे धीरे तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा शरीर, ये जो महापुरुषों को एक जगह बैठे हुए देखा जाता, इसीलिए देखा जाता क्योंकि उन्होंने अपनी संपूर्ण वासनाओं का क्या कर दिया, कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। जब कुछ भी नहीं चाहिए तो महाराज फिर क्या चाहिए, इसलिए वो व्यर्थ की चेष्टाओं से रहित हो जाते हैं। हमको तो बहुत कुछ चाहिए, इसलिए हमारी व्यर्थ की चेष्टाएं, भागम भाग की चेष्टाएं क्या होती रहती, जारी रहती हैं। कभी इधर भाग, कभी उधर भाग, कभी इधर भाग, कभी उधर भाग, लेकिन मिलता कहीं कुछ नहीं। जब कुछ हो तब तो मिले, जैसे कोई मायादीप में पहुंच जाए और मायादीप में कहीं पर हीरा दिखाई दे, कहीं पर सोने का भंडार दिखाई दे, जहां मृग तृष्णा का जल, शास्त्र उदाहरण देते हैं, कभी हीरा पकड़ने दौड़ता, हीरा नहीं मिला तो कहते चलो सोना ही पकड़ ले, सोना पकड़ने दौड़ा, दूसरा चांदी का ढेर, वो भी नहीं मिला, चलो चांदी पकड़ ले, अंत में कुछ भी हाथ, क्योंकि ये सब क्या था, ये सब माया जाल था महाराज। और इस माया को पकड़ने में हम दिन रात क्या कर रहे हैं, लगे हुए क्यों नहीं, परिश्रम करने में लगे हुए हो महाराज। ये माया कभी भी तुम्हारे पकड़ में आने वाली नहीं है, और सबसे बड़ी चीज तो ये है ना, बहुत थोड़ा सा वह गंभीर भी है और हंसी का विषय भी है। जब रावण की मृत्यु हुई महाराज, वाल्मीकि रामायण बड़ा सुंदर वर्णन किया, कहते हैं महाराज जब रावण की मृत्यु हो गई तो भगवान ने जो है देखा कि विभीषण छाती पीट पीट के महाराज पटक हाथ पटक पटक के रोने लगा, हे भ्राता मैंने इतना समझाया, तुमने अगर मेरा कहा माना होता तो आज तुमको ये दिन ना देखना पड़ता। भगवान ने विभीषण को उठाया, आंसू पोंछे, विभीषण से भगवान बोले रावण के लिए मत रो, हमारी तुम्हारी भी यही दशा होने वाली तुम उसके लिए क्या कर रहे हो, विलाप कर रहे हो, अरे कल तुम्हारे लिए कोई क्या कर रहा होगा, विलाप कर रहा होगा, इसलिए रावण के लिए रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा काल जो तुम्हारे नजदीक आ रहा उसकी ओर निहारने की क्या करो, चेष्टा करो महाराज। जब इस प्रकार से अपने आने वाले अंतिम स्टेशन की तरह, जैसे आप कहीं जाते हैं ट्रेन में तो तीन स्टेशन पहले से ही आप झांक झांक के देखने लगते हैं, मेरा स्टेशन तो नहीं आ गया, बोले मेरा स्टेशन तो नहीं आ गया, इतना ही सजग होना पड़ेगा अपने आखिरी स्टेशन के लिए। जब इतने सजग हो जाओगे तो व्यर्थ की चेष्टाओं से क्या हो जाएगा, अरे भाई किसी का स्टेशन उतरने वाला आने वाला हो और उस समय जो है उसका पड़ोसी सीट वाला कहे आओ चलो तुमको जो है बहुत सुंदर फिल्म दिखाते हैं फोन, क्यों भाई देखेगा, कहेगा भैया मुझे उतरना है, अपनी फिल्म अपने पास रखो, करोगे कि नहीं करोगे, हाथ जोड़कर कि व्यर्थ की चेष्टा में लग जाओगे, लाओ पहले फिल्म देख लें स्टेशन में बाद में उतर जाएंगे, है ऐसा संभव है। तो इसी प्रकार से आप भी इस व्यर्थ की फिल्म को क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। यदि आपका लक्ष्य परमेश्वर है, ध्यान देना, ये तभी संभव है जब आपका लक्ष्य परमेश्वर होगा, लेकिन अगर संसार आपका लक्ष्य है फिर ये सब आराम से खूब फिल्म देखो महाराज, मरते दम तक चाट खाओ, पानी पूरी खाओ, भजिया खाओ, हैं, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, है ना, क्योंकि अगले जन्म में फिर तुमको क्या बना देगा, वो स्ट्रीट डॉग बना देगा, क्या बना देगा, स्ट्रीट डॉग बना देगा। फिर कभी पानी पूरी वाले के पास जाकर पानी पूरी खाओ, कभी मिठाई वाले के पास जाकर मिठाई खाओ, है ना, सब चीजें खाओ, खूब घूम घूम के खाओ, क्यों भाई, अरे भाई लक्ष्य जब यही है तो भगवान कहते हैं कि मैं तुमको ऐसी जगह पहुंचा देता हूं कि तुमको पैसे की बिल्कुल भी चिंता, सब फ्री में मिलेगा। क्यों भाई, फ्री में खाता है कि नहीं खाता? आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उसको महाराज फ्री में मिलता है। इतनी बड़ी बड़ी दावतें होती हैं महाराज। अभी गिरीश भाई हमें बता रहे थे बम्बई 5,000-5,000 रुपये प्लेट की दावत, कितनी 5,000-5,000 रुपये प्लेट की दावत होती है, और अगले दिन वही 5,000 रुपये की प्लेट कुत्ते और सुअर खा रहे होते हैं। बोलो सच्चिदानंद। क्यों भाई, 5,000 रुपये प्लेट की दावत खाने के लिए मनुष्य बनना पसंद करोगे या कुत्ता? भगवान कहते हैं महाराज मनुष्य क्यों बनना फिर, इसके लिए आनंद लो फ्री में, कोई पैसा तुमको खर्च नहीं करना, चाहे कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, तुमको हर जगह इनविटेशन मिला मिलाया है। इसलिए अचापलम, व्यर्थ की चेष्टाओं से, आपने देखा होगा ना कहीं से आपको बढ़िया इन्विटेशन आ जाए और आपसे कहना पड़ता है सत्संग छोड़ दो, तुरंत भागोगे वहीं पे, क्योंकि आपका मन चंचल है, आपका तन चंचल है, आपकी बुद्धि चंचल है, आपका लक्ष्य परमात्मा नहीं है, आपका लक्ष्य संसार है महाराज, है ना। तो इसलिए अचापलम हो जाओ। उसके बाद भगवान ने जो है तृतीय श्लोक जो इसका बड़ा सुंदर है, तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवीम अविजातस्य भारत, है ना। वास्तविकता में तो ये हमारे पूर्वकृत जन्मों का परिणाम है दैवी संपदा, कि हम स्वतः ही, इसीलिए आपने देखा आपका जीवन आप कहीं और ले जाना चाहते हैं लेकिन जाता कहीं और है, आप सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। ये अभिजातस्य लेकर उत्पन्न होने के कारण ऐसा होता है। एक बहुत सुंदर दैवी संपदा का रूप है जिसका नाम है तेज। तेज जो है ये हमारे अंदर आध्यात्मिक पथिक के अंदर अति आवश्यक है भगवान को। इसीलिए जो है हम लोग दैवी संपदा में जब वर्णन करते हैं शांति पाठ के मंत्र में बोलते हैं, है ना, कि किस प्रकार से जो है हमारा जीवन विषेम देवहितम यदायु, क्या होना चाहिए, हाँ ये संसार के लिए नहीं परमार्थ के लिए हमको ये क्या मिली है, आयु मिली है, और इसमें जो है आलस प्रमाद की कोई आवश्यकता। हाँ तेज का मतलब यहां सौंदर्य से नहीं है, तेज का मतलब ये नहीं कि जैसे भगवान के चित्र में कोई तेज दिखाया जाता है ऐसा कोई तेज आपके अंदर आए। तेज का शब्द का अर्थ यहां पर ये है कि आपके अंदर परमार्थ में किसी प्रकार का आलस्य नहीं होना चाहिए। अगर परमार्थ में यदि आपको आलस्य का अनुभव होता, जितनी स्फूर्ति हमारे अंदर किस चीज के प्रति होती है, संसार के प्रति होती, संसार के कार्य करने में जिस प्रकार से हम स्फूर्तिवान हो जाते हैं, तुरंत तैयार हो जाते हैं, रात को 2 बजे जाना पड़े, रात को 1 बजे जाना पड़े, सुबह जाना पड़े, कोई चिंता नहीं, लेकिन जब परमार्थ का नंबर आता है तो हमको समय दिन सब चीजें देखनी पड़ती हैं। ये हमारे आलस्य प्रमाद का कारण है और इसका परिणाम है कि हमको परमार्थ की प्राप्ति नहीं होती। महापुरुषों के अंदर जो ये तेज देखा जाता है ये केवल यही कारण है कि वो परमार्थ में कभी भी आलस्य प्रमाद का अनुभव नहीं करते हैं। तो जब आपका शरीर इस प्रकार से स्फूर्तिवान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, इसीलिए शांति पाठ के मंत्रों में बार बार संददामि कहते हैं, दिन और रात को अहोरात्रान संददामि, मैं दोनों दिन और रात को एक कर दूं। स्फूर्ति का तो लक्षण यहां माना गया शांति पाठ कि दिन और रात, दिन और रात्रि दोनों को एक कर दूं, जिसको आप लोग कहते हैं ना एड़ी से चोटी एक कर देना। तो परमार्थ में भी जब हम इस प्रकार से परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा देते हैं तो उसको कहते हैं तेज। जैसे आपकी कोई चीज खो गई हो और बहुत बहुमूल्य चीज हो, जैसे उसको ढूंढने में आप दिन रात एक कर देते हैं, खाना पीना भुला देते हैं, इसी प्रकार से जब आप परमेश्वर को ढूंढने में खाना पीना भुला के उसके पीछे लग जाओगे तो इसको कहा जाता तेज। आपके अंदर ये तेजी हर समय बनी रहनी चाहिए। उठते साकते सोते बैठते रात के 2 बजे भी नींद खुल जाए तुरंत या तो माला लेके बैठ जाओ, नहीं हाथ से कैसे भी भगवान का नाम करो, जप करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ ना कुछ उसके नाम पर शुरू हो जाओ, कुछ भी करो लेकिन कुछ करो, ये तेज कहलाता है महाराज। तो इस प्रकार का पथिक होना पड़ेगा यदि आप इस संसार में आकर परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। तो तेज के ऊपर कल भी हम लोग चर्चा करेंगे, अभी हमारे पास 2 दिन हैं, कल और परसों। तो तेज वास्तविकता में महाभगवान के जो चेहरे के संग जो या उनके शरीर में तेज दिखाया जाता है वो वास्तविकता में परमेश्वर के परम चैतन्य स्वरूप का द्योतक है। जैसे परम चैतन्य होने के कारण कोई चीज परम चैतन्य हो, है आग, जलती हुई आग है, बंद आग और जलती हुई आग, हमारी स्थिति क्या है, हम बंद आग हैं, परमार्थ में बंद हैं और संसार में जागे हुए हैं। तो इस चीज को हम फिर से समझने की चेष्टा करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।